अध्याय तीन, द्वीप, द्वीप समूह व द्वीप श्रृंखलाएं। द्वीप द्वीप समूहों व द्वीप श्रृंखलाओं की आर्थिक संसाधनों की दृष्टि से संपन्नता ही नहीं अपितु महाद्वीपों विभिन्न देशों के संदर्भ में इनकी स्थिति का भू राजनैतिक क्षेत्र में अपना अलग ही महत्व है। सामरिक दृष्टिकोण से कभी कभी द्वीपों की स्थिति ऐसी अनुकूल होती है जहाँ से कोई समुद्री शक्ति अपना अड्डा स्थापित कर मुख्य भूमि तक अपने प्रभाव में वृद्धि कर सके। मुख्य भूमि से अवरोध की स्थिति में ये पीछे आ सकते हैं। इस प्रकार इन्हें आक्रमण हेतु अथवा आक्रमण से बचाव हेतु प्रयोग किया जा सकता है। मुख्य भूमि के अति समीप स्थित द्वीप बहुत उपयोगी होते हैं। इन्हें पुल की सहायता से या स्टीमर इत्यादि से संबंधित करके पत्तन अथवा प्रवेश द्वार की तरह प्रयोग में लाया जा सकता है, जैसे जंजीबार। विश्व की दो बड़ी शक्तियों द्वारा आधुनिक तकनीकों द्वारा विकसित दूरवेधी मिसाइलों तथा न्यूक्लियर हथियारों के कारण समुद्र में भूखंडों से काफी दूरी पर स्थित द्वीप भी अब महत्वपूर्ण हो गए हैं। हिंद महासागर में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा नाटो देशों द्वारा स्थापित सैनिक अड्डे अफ्रीका व एशिया के देशों, विशेषकर हिंद महासागरीय राज्यों की स्वतंत्रता तथा पेट्रोलियम उत्पादक मध्य पूर्व के लिए अत्यंत खतरनाक हैं। द्वीपों पर बड़ी आसानी से अधिकार किया जा सकता है। यूरोपियनों द्वारा विभिन्न देशों के उपनिवेश स्थापन के बहुत पहले से समीपवर्ती द्वीपों पर अधिकार करके इन्हें सैनिक दृष्टिकोण से सुदृढ़ बनाया गया तथा द्वीपों को अपने स्वार्थ के अनुसार विश्व व्यापार को संचालित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। समुद्री शक्तियां जानबूझकर मुख्य भूमि के समीपस्थ द्वीपों को चोर बाजारी स्मगलिंग के लिए प्रयोग करने लगी हैं, जिससे मुख्य भूमि की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगे। इसके लिए द्वीपों की चट्टानी प्रकृति, जिसका कटापटा तट अच्छे बंदरगाह के लिए उपयुक्त होता है, अथवा प्रवालीय द्वीपों की झीलें जो सुरक्षित बंदरगाह का कार्य करती हैं, तथा द्वीप के निवासी जो मुख्य भूमि के निवासियों से अक्सर सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पिछड़े होने के कारण बाह्य शक्तियों से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, आदर्श परिस्थितियां पर प्रस्तुत करते हैं। एक महाद्वीप देश दूसरे महाद्वीप देश में जाने के लिए ये द्वीप सीढ़ियों का कार्य भी करते हैं। प्राचीन काल में समुद्री मार्गों पर स्थित द्वीप ईंधन आपूर्ति अथवा मरम्मत हेतु प्रयुक्त होने से अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। आज वायुयानों के आविष्कार तथा स्वचालित आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विशाल जलयानों के कारण इनका उपयुक्त दृष्टि से महत्व कम हो गया है। फिर भी वायु मार्गों अथवा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण हेतु इन द्वीपों का महत्व बढ़ा ही है। जैसे ईरान के पारस की खाड़ी के द्वीपों पर अधिकार करने के बाद से विशेष परिस्थितियों में शत्रु के पेट्रोलियम टैंकरों को नष्ट कर देना अत्यंत आसान हो रहा है। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर अग्रिम पृष्ठों में हिंद महासागर के द्वीपों का भौगोलिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, राजनैतिक तथा सामरिक दृष्टिकोण से वर्णन प्रस्तुत है। इंडोनेशिया पूर्वी द्वीप समूह की पश्चिमी द्वीप श्रृंखला को इंडोनेशिया के नाम से जाना जाता है। यह हिंद महासागर को दक्षिणी चीन सागर, जो कि प्रशांत महासागर से संबंधित है, से अलग करता है। द्वीपों की श्रृंखला भूमध्य रेखा पर न्यूगिनी से पश्चिमी ईरियन तक 450 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। इसके अंतर्गत सुमात्रा, जावा व मदुरा, सेलिबीज, बोर्नियो, लघु सुंडा, मलक्का, एरियन, जाया, न्यूगिनी का पश्चिमी अर्धभाग तथा लगभग 3000 द्वीप तथा टापू आते हैं। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल 19.19 लाख वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से इसका विश्व में 12वां स्थान है तथा दक्षिण पूर्व एशिया में दूसरा। इसकी 1980 की जनसंख्या 14.75 करोड़ थी, जिसमें 2.8 करोड़ सुमात्रा में, 9.1 करोड़ जावा व मदुरा में, 0.67 करोड़ बोर्नियो में, 1.04 करोड़ सेलिबीज में तथा बाली, सुंडा, मलक्का व इरियन जाया में सम्मिलित रूप से 11 करोड़ जनसंख्या का निवास था। यहाँ लगभग 300 विभिन्न मूल के निवासी हैं जो लगभग 250 भाषाएं बोलते हैं। प्रमुख नगर व उसकी 1980 में जनसंख्या निम्न है। सुमात्रा में मैदान 6.35 लाख व पालेमबैंग में 5.83 लाख, जावा व मदुरा में जकार्ता 45.76 लाख, सुराबाया 15.6 लाख, बांडुंग 12.01 लाख, सेमरांग 6.46 लाख तथा जोजियाकार्ता 3.42 लाख, बोर्नियो में बंजर मासिन 2.81 लाख तथा पोंटियानक 2.71 लाख, सेलिबीज में उजुंग पटंग 4.34 लाख। मसाले के व्यापार पर नियंत्रण हेतु हिंद महासागर के इस क्षेत्र में वास्को डी गामा के समय में सर्वप्रथम पुर्तगाली तत्पश्चात डच आए। मसाले के व्यापार में गिरावट के साथ ही टीन, कहवा, चीनी, तंबाकू व अन्य कृषि उपजें तथा 20वीं सदी के प्रारंभ में रबर व पेट्रोलियम का व्यापार महत्वपूर्ण हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय थोड़े समय के लिए जापान भी यहाँ की खनिज संपत्ति व रबर के कारण आया। इरियन जाया को छोड़कर यह 27 दिसंबर 1949 को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। इरियन जाया 1 मई 1963 को स्वतंत्र हुआ। देश के कुछ भाग का, विशेषकर उत्तर व मध्य जावा का, देश में उच्चतम घनत्व है। यह प्रमुख रूप से कृषि प्रधान देश है। यहाँ की मिट्टी अत्यंत उपजाऊ है। सुमात्रा के आर्द्र पश्चिम तट के 21 मंतावी द्वीप एक समुद्री कटक द्वारा बने हैं। ये सुमात्रा के मोड़दार पर्वत श्रृंखला के समानांतर स्थित कटक के थोड़ा निमज्जित हो जाने से बने हैं। भौगर्भिक दृष्टिकोण से यह अराकान योमा की मोड़दार पर्वत श्रेणियों से संबंधित हैं। इस क्षेत्र की विशिष्ट आकृति पर्वतीय झीलें हैं जो ज्वालामुखी निर्मित हैं तथा प्रवाल भित्तियाँ व प्रवाल वलय समुद्री उत्पत्ति से संबंधित हैं। इस क्षेत्र का सबसे बड़ा द्वीप नियास है जो कि प्रचंड भूकंप का क्षेत्र रह चुका है। ये द्वीप अधिकतर उपेक्षित पड़े हैं। इनकी जनसंख्या अत्यंत विरल है। इन द्वीपों के निवासियों का संबंध दक्षिणी सागर के पॉलिनेशियन वर्ग से है तथा ये संभवतः कॉकेसस निवासियों के पूर्व की ओर स्थानांतरण के द्योतक हैं। इस श्रृंखला का पश्चिमी इरियन से पहले अंतिम द्वीप तिमोर है, जिसका पूर्वी 60% भाग 1975 तक पुर्तगाल के अधिकार में था। 1980 में इसकी जनसंख्या 5.55 लाख तथा राजधानी दिल्ली जनसंख्या 65,451 है। तिमोर का पश्चिमी आधा भाग इंडोनेशिया के पास 1949 से ही था। इसकी 1980 में संपूर्ण जनसंख्या 27.37 लाख तथा राजधानी कुपैंग जनसंख्या 52,398 है। इस श्रृंखला के अन्य द्वीपों की भांति तिमोर भी पर्वतीय है, जिसकी सर्वाधिक ऊंचाई 2500 मीटर तक पाई जाती है। यहाँ का पर्वतीय भाग घने उष्णकटिबंधीय वनों से घिरा है। दिल्ली से रबर, रम, कहवा व चंदन का निर्यात होता है। इंडोनेशिया में वस्त्र, कागज, दिया सलाई, ऑटोमोबाइल व साइकिल के पुर्जों को जोड़ना, टायर व शीशे के सामानों का निर्माण, कास्टिक सोडा तथा अन्य रसायन, सीमेंट, खाद आदि महत्वपूर्ण उद्योग हैं। जहाजों के निर्माण का कार्य जकार्ता राया, सुराबाया, सेमरांग व रबर, चाय, लकड़ी, कहवा, टीन, नारियल व तंबाकू का महत्वपूर्ण स्थान है, जबकि आयात में शुद्ध पेट्रोलियम, चावल, खाद, रसायन, धागे, लोहा, इस्पात तथा औद्योगिक मशीनरी महत्वपूर्ण है। मरगुई द्वीप श्रृंखला वर्मा के तिनासरिम तट के पश्चिमी पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा में विस्तृत द्वीप समूह मरगुई द्वीप श्रृंखला के नाम से जाने जाते हैं। द्वीप के चारों ओर प्रवाल भित्ति है जिसे लिस के नाम से जाना जाता है। ये द्वीप प्राकृतिक सौंदर्य के भंडार हैं। यहाँ के पर्वतों की चोटियाँ जंगलों से ढकी हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय यहाँ बहुत से झरने व प्रपात क्रम बन जाते हैं। 1937 तक ब्रिटिश इंडिया के, 1942 से 1945 तक जापान के अधीन रहकर ये द्वीप बर्मा के साथ 1948 में स्वतंत्र हुए। इन द्वीपों में रहने वाले समुद्री जिप्सी के नाम से जाने जाते हैं। ये वर्ष भर अपनी नावों में शांत जल मार्गों से होकर एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक मछलियां मारते रहते हैं। ये मोतियां भी निकालते हैं, शंख, ट्रीपैंग, दोहरा नारियल तथा खाने योग्य चिड़ियां चीनी व्यापारियों के प्रमुख आकर्षण के केंद्र हुआ करते थे। स्थानांतरित कृषि यहाँ अभी भी महत्वपूर्ण है। ये द्वीप टीन के उत्पादन में अत्यंत समृद्ध हैं। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, भारत। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में उत्तर दक्षिण विस्तार में 590 किलोमीटर, बर्मा के निग्राइस अंतरीप से 193 किलोमीटर, कलकत्ता से 1255 किलोमीटर तथा मद्रास से 1190 किलोमीटर की दूरी पर अर्धचंद्राकार आकृति में स्थित हैं। जापानियों ने कार निकोबार पर जुलाई 1942 में तथा अंडमान पर मार्च 1942 में अधिकार कर लिया। जापान ने कार निकोबार में एक बहुत बड़ा आपूर्ति अड्डा स्थापित कर लिया था। 8 अक्टूबर 1942 में दोनों ही द्वीपों पर भारत सरकार का पुनः अधिकार हो गया। 1857 से 1942 तक इन द्वीपों में भारत सरकार द्वारा आजन्म व लंबे समय तक कारावास पाए अपराधियों को भेज दिया जाता था। अंडमान के पांच बड़े द्वीप उत्तरी, मध्य व दक्षिणी अंडमान तथा बरटंग व रटलैंड को महान अंडमान के नाम से जाना जाता है। यह लगभग 467 किलोमीटर लंबा तथा सर्वाधिक चौड़ाई में 51 किलोमीटर है। इसके दक्षिण में लघु अंडमान स्थित है। इसके अतिरिक्त 204 छोटे छोटे टापू नुमा द्वीप हैं, जिनके दो प्रमुख द्वीपों को रिची द्वीप श्रृंखला तथा लैबिरिंथ द्वीपों के नाम से जानते हैं। अंडमान का पूर्ण क्षेत्रफल 6,475 वर्ग किलोमीटर है। निकोबार द्वीप लघु अंडमान से 121 किलोमीटर दक्षिण 10 डिग्री जलमार्ग से अलग होते हैं। इसमें कुल 19 द्वीप हैं, जिनमें सात में मानव निवास नहीं है। स्वेस द्वीप तीन भागों, दक्षिण, मध्य व उत्तरी निकोबार में उप विभाजित हैं, जिनके प्रमुख द्वीप क्रमशः महान निकोबार, कामोर्ता और नैन कावरी तथा कार निकोबार हैं। इनका संपूर्ण क्षेत्रफल 1,645 वर्ग किलोमीटर है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह अधिकतर पहाड़ी हैं। कुछ शिखर 400 मीटर से भी ऊंचे हैं। उत्तरी अंडमान में सैंडल पीक 750 मीटर की ऊंचाई सर्वाधिक है। ये हिमालय अराकान योमा पर्वत श्रृंखला के विस्तार हैं। द्वीपों के किनारे तट कटा फटा है, जो उत्तम बंदरगाह के लिए उपयुक्त है। चारों ओर स्थित समुद्र लगभग समान रूप से 400 फैदम गहरा है। पश्चिमी तट के सहारे प्रवाल भित्तियां विकसित हो गई हैं। जलवायु भूमध्य रेखीय प्रकृति की है, जिसमें ग्रीष्म व शीतकालीन ऋतुओं में विशेष अंतर नहीं होता। तापमान वर्ष भर ऊंचा 30 डिग्री से 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। दक्षिण पूर्व तथा दक्षिण पश्चिम दोनों मानसूनों से वर्ष भर वर्षा होती रहती है, जिसका औसत 325 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है। भूमि का 90% से अधिक भाग जंगलों से घिरा है। इसमें मूल्यवान पादोक अथवा अंडमान की लाल कठोर लकड़ी, गुर्जर की मुलायम लकड़ी, पपीता, धूप व कोका इत्यादि की लकड़ियाँ मिलती हैं। गुर्जर व पपीता की लकड़ियों से दिया सलाई की सीकें तैयार की जाती हैं। निकोबार द्वीपों में नारियल, सुपारी, पान आदि के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। वन विभाग प्रतिवर्ष 25,000 टन टिम्बर लकड़ी मुख्य भूमि को भेजता है। कृषि भूमि तट के सहारे पाया जाता है। प्रमुख फसल चावल है, जिसमें यह अब अपनी संपूर्ण आवश्यकता का लगभग आधा उत्पन्न करने में सक्षम हो गया है। अन्य फसलों में मक्का, मूंग, अरहर तथा गन्ना महत्वपूर्ण हैं। उष्णकटिबंधीय फल जैसे केला, पपीता, अमरूद, आम आदि का निर्यात होता है। नारियल, कहवा, चाय तथा रबर की बागाती कृषि होती है। इस समय जूट उत्पादन भी प्रारंभ किया गया है। शक्ति के साधनों के अभाव में तथा जलवायु अनुकूल न होने से उद्योग धंधों का विकास नहीं हो पाया है। वन संपत्ति पर आधारित उद्योग ही विकसित हो पाए हैं। लकड़ी काटना, लकड़ी की वस्तुएं बनाना, दिया सलाई व नारियल के रेशे से विभिन्न वस्तुएं बनाने का कार्य होता है। पोर्ट ब्लेयर में एक चिराई मिल तथा डनवर पॉइंट में एक नारियल के तेल की मिल है। यहाँ की संपूर्ण जनसंख्या 18,82,054 घनत्व 23 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, वृद्धि दर 1971 से 82 में 63.5% नर नारी अनुपात 761 है। अंडमान निकोबार के आदिम निवासी जंगलों में रहकर शिकार करते तथा मछली मारते हैं। ये नेग्रिटो लोगों की प्रकृति से मिलते जुलते हैं। इनकी सभ्यता लगभग पत्थर युग की है। इसके विपरीत निकोबारी मंगोल जाति के हैं, जो बहुत पहले एशिया की मुख्य भूमि से स्थानांतरित हुए होंगे। यहाँ केंद्रीय सरकार की योजना के अनुसार पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को 1953 से बसाया गया है। पोर्ट ब्लेयर यहाँ की राजधानी, सबसे बड़ा नगर व उत्तम बंदरगाह है। यह कलकत्ता व मद्रास से स्टीमर व वायु सेवा द्वारा संबंधित है। अन्य प्रमुख बंदरगाहों में अंडमान में उत्तर में पोर्ट कार्नवालिस तथा मध्य में एल्फिंस्टन व माया बंदर तथा निकोबार में भूमि से घिरा हुआ सुरक्षित बंदरगाह नैनकावरी महत्वपूर्ण है। श्रीलंका भारत के दक्षिण पूर्व राज्य तमिलनाडु से केवल 30 किलोमीटर चौड़े पाक जलडमरू मध्य द्वारा अलग परंतु आदम का पुल नामक द्वीप श्रृंखलाओं से लगभग जुड़ा हुआ 66,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला द्वीप श्रीलंका हिंद महासागर के कुछ बड़े द्वीपों में से एक है। 28 जून 1974 को श्रीलंका को कक्षद्वीप द्वीप देकर पाक जलडब्रू मध्य में भारत व श्रीलंका के बीच की सीमा पुनः निर्धारित की गई है। भौगर्भिक दृष्टिकोण से श्रीलंका भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप से संबंधित है। प्राचीन काल से ही श्रीलंका के अत्यधिक महत्व का कारण सर्वप्रथम इसकी भारत के पूर्वी व पश्चिमी तटों के मध्य, तत्पश्चात ग्रेको रोमन संसार व चीन के मध्य, इसके बाद एक ओर अरब मध्य पूर्व तथा दूसरी ओर दक्षिण पूर्वी एशिया और सुदूर पूर्व की स्थिति थी। यह केप होकर आने वाले यूरोपियों पोतों तथा स्वेज नहर खुलने के उपरांत यूरोप से सुदूर पूर्व व ऑस्ट्रेलिया को जाने वाले इंजन उपयुक्त चलयानों के मार्ग में पड़ता है। टेप्रोबेन, स्ट्रेबो, प्लीनी तथा अन्य भूगोलविदों ने संयोगवश इधर से निकलने वाले यात्रियों से सुनी गई कहानियों के आधार पर श्रीलंका की संपन्नता का वर्णन किया है। इसकी संपूर्ण स्थिति तथा संपन्नता ने 3 यूरोपीय शक्तियों, पुर्तगाली, डच तथा अंग्रेजों को आकर्षित किया, जिन्होंने द्वीप में एक के बाद एक अपने अड्डे स्थापित किए। 1795 से 96 में अंग्रेजों ने डचों से श्रीलंका को हथिया लिया तथा 150 वर्षों के शासन के उपरांत 1948 में श्रीलंका कॉमनवेल्थ का एक स्वतंत्र सदस्य बना। अगले 10 सालों तक ब्रिटेन ने पूर्वी तट पर स्थित त्रिनकोमली पत्तन तथा कुछ अन्य हवाई क्षेत्रों में नौसैनिक अधिकारों के लिए बड़ा संघर्ष किया, परंतु 1957 में श्रीलंका ग्रेट ब्रिटेन का सुरक्षा समझौता रद्द कर पूर्णतया निरपेक्ष देश बन गया। ऐसा विश्वास किया जाता है कि श्रीलंका वासियों के पूर्वज उत्तरी भारत के आर्य रहे होंगे। बाद में भारत के दक्षिण पूर्व तट से तमिल तथा अरब व्यापारी आए, जिनके अग्रज तट पर निवास करने वाली जनसंख्या में अभी भी प्रमुख हैं। श्रीलंका में सिंघल राष्ट्रभाषा है। तमिल उत्तरी पूर्वी प्रांतों में बोली जाती है। श्रीलंका की संपूर्ण जनसंख्या 1.48 करोड़ 1981 के अनुसार है, जिसमें प्रमुख 1.09 करोड़ सिंहली, 18.72 लाख श्रीलंका के तमिल तथा 10.57 लाख श्रीलंका के मूर हैं। 1971 से 81 के बीच जनसंख्या में 17.1% वृद्धि हुई। 1981 में जन्मदर 28 तथा मृत्यु दर 6 प्रति 1000 थी। 1981 की जनगणना के अनुसार संपूर्ण जनसंख्या का 21.5% नगरीय जनसंख्या थी। 1 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले नगर निम्न हैं: कोलंबो 5.85, देही वेला माउंट, लैम्बिग्निया 1.74, मोरातुआ 1.35, जाफना 1.18, कोट्टे 1.01 तथा कैंडी 1.0 लाख। संपूर्ण द्वीप का 32.8% क्षेत्र कृषि के अंतर्गत है। इसमें द्वीप के 44% लोग संलग्न हैं। प्रमुख फसल चावल की है, जो आर्द्र दक्षिण पश्चिमी तथा शुष्क क्षेत्रों में सिंचाई कर उत्पन्न की जाती है। यूरोपियनों ने आकर रबर, कहवा, चाय तथा नारियल की बागाती कृषि प्रारंभ कर द्वीप की अर्थव्यवस्था को संपन्नता प्रदान की। मार्च 1976 में श्रीलंका स्टेट प्लांटेशन कॉरपोरेशन ने सभी प्राइवेट रबर व चाय के बागानों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। श्रीलंका टी कॉरपोरेशन 1972 में ही स्थापित हो चुका था। 1981 में चावल 22, चाय 2.1 तथा रबर 1.24 लाख टन उत्पन्न किया गया। खनिजों में प्रमुख रत्न है, जो मुख्यतः दक्षिण पश्चिम के रत्नपुरा जिले से निकाला जाता है। इसमें पन्ना, माणिक, बेरिल, टोपाज, रक्तमणि, गार्नेट व टूरमलाइन हैं। इनके निर्यात से 1981 में 30.4 करोड़ रुपयों की प्राप्ति हुई। ग्रेफाइट की 3 बड़ी खानों, बोगाला, काहातागहा, कलंगहा तथा अन्य छोटी छोटी खानों से 1981 में 7,453 टन ग्रेफाइट उत्पन्न किया गया। 1981 में 80,000 टन इल्मेनाइट तथा 1.04 लाख टन नमक उत्पन्न किया गया। 1981 में 35.53 तथा 19.73 अरब रुपयों के मूल्य का क्रमशः आयात तथा निर्यात किया गया। आयातित वस्तुओं में पेट्रोलियम, मशीनरी तथा यंत्र, आवागमन के साधन तथा खाद्य सामग्री प्रमुख हैं। चाय, रबर, नारियल व इसका तेल, वस्त्र तथा रत्न निर्यात किए जाते हैं। लक्षद्वीप, भारत। भारत के दक्षिण पश्चिम तट से 200 किलोमीटर की दूरी पर, कालीकट से केवल 108.78 किलोमीटर स्थित 27 द्वीपों के समूह को, जिसमें 19 द्वीप बड़े हैं और केवल 10 में जनसंख्या का निवास है, लक्षद्वीप की संज्ञा प्राप्त है। 1956 में लक्षद्वीप, अमीन दीवी व मीनिकॉय द्वीपों को केंद्र शासित राज्य घोषित किया गया। 1973 में तीनों द्वीप समूहों को मिलाकर एक नया नाम लक्षद्वीप दिया गया। अमीन दीवी, जिसके अंतर्गत 5 बड़े द्वीप चेतलट, कित्तन, कादमत, अमीनी और बीतरा सबसे उत्तर में तथा लक्कदीव, जिसके अंतर्गत एंड्रोथ, कावाराथी, अगाथी व कालपेनी आते हैं, मध्य में स्थित हैं। सुदूर दक्षिण में मिनिकाय इन दोनों द्वीपों से 9 डिग्री जल मार्ग द्वारा पृथक है। इन द्वीपों का संपूर्ण क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 4.8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का एंड्रोथ सबसे बड़ा द्वीप है। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप चागोस अंतः समुद्री कटक के उत्तरी सिरे पर, मालदीव मध्य में और चागोस व टीगो गार्सिया दक्षिणी सिरे पर स्थित हैं। लक्षद्वीप अमीन दीवी व मीनिकाय द्वीप समूहों का निर्माण प्रवाल वलय व प्रवाल भित्तियों से हुआ है, अतः यहाँ जीवाश्मों से युक्त मुलायम शैलें पाई जाती हैं। भूगर्भशास्त्रियों का विश्वास है कि लक्षद्वीप अरावली के एक उत्क्षेप से संबंधित है, जिस पर बाद में निमज्जन के उपरांत उपयुक्त गर्म जल में प्रवाल विकसित हुए। एंड्रोथ द्वीप, जिसका विस्तार पूर्व पश्चिम है, को छोड़कर साधारणतया सभी द्वीपों में पश्चिम की ओर स्थित प्रवाल भित्तियों व द्वीपों के बीच झील पाई जाती है। यह एक हो गया आपका, ठीक है ठीक, नेट पे बैठने जा रहे हैं, ठीक है बैठिए है।